Oh, مش فاهم. तो आज हम एकाग्रता के ऊपर चर्चा करेंगे। भावने का सर्व सिद्धि प्राप्त होने का साधन है एकाग्रता। तो इस मुरली में बाबा ने 28 दिसंबर 1979 की मुरली है, इस मुरली में बाबा ने एकाग्रता प्राप्त करने की विधि भी बताई है। एकाग्रता की कमी है तो उससे क्या नुकसान होता है वो भी बताया। एकाग्रता से फायदे क्या हैं वो है। एकाग्रता की महिमा, एकाग्रता भंग क्यों होती है वो सारा बताया इसमें। तो बाबा ने आज सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देखा, फिर तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि बताई बाबा ने, और वो भी पहली पहली के रूप में पूछा पहले पहरे में कि तीव्र पुरुषार्थ की विधि क्या है। तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिससे बाबा ने कहा कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सिद्धि स्वरूप बन जाए, संकल्प बोल कर्म सब सिद्ध हो जाए, जिससे विषम में प्रसिद्ध होंगे, उसकी सहज विधि कौन सी है बाबा ने कहा, एक शब्द में बताओ। जिस विधि से सर्व सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाएंगी, और वो सहज विधि है जो जिसका संबंध संकल्प बोल और कर्म से भी है, वो सहज विधि है एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति तो संसार में भी हम देखते हैं या हम सभी जीवन में अनुभवी हैं, जो भी हमने सफलता अर्जित की है चाहे छोटी चाहे बड़ी, उसमें मुख्य रूप से एकाग्रता का ही अधिकतर उसमें महत्व होता है। खिलाड़ी भी जब खेलता है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए लंबे समय से पहले वो अभ्यास करता है एकाग्रता का, उसके उपरांत ही वो अपने लक्ष्य को अर्जित करता है। अगर लक्ष्य से विस्मृत है तो फिर लक्ष्य अर्जित करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, विस्मृत रहते हैं, वो शक्ति नहीं आती, मनोबल नहीं बढ़ता, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। फिर जितने भी आविष्कारक हुए हैं, अनुसंधान करता हुए हैं, वो भी अधिकतर एकाग्र होकर ही कोई भी कार्य पर रिसर्च करते हैं तो ही उनको सिद्धि मिलती है। इसी तरह से अर्जुन ने अपने लक्ष्य को अर्जित किया था, जो चिड़िया की आंख में बाण के द्वारा उसको भेदने का जो लक्ष्य था वो भी मन की एकाग्रता थी। इसी तरह हमको पढ़ाया जाता था कि जब कागज के ऊपर लेंस रखेंगे और उसको हिलाना नहीं तो वो भस्म होगा, नहीं तो वो भस्म नहीं होगा। इसी तरह से हमारे जो विकर्म हैं वो भी विनाश तभी होंगे जब हमारा मन बुद्धि एकदम एकाग्र होगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो तो कागज सूर्य की किरणों से जलता है, लेकिन हमारे जो कागज है विकर्मों का वो तो लोहे जैसा है और उसके लिए बहुत सारा टेम्परेचर चाहिए। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा के ऊपर अपने मन बुद्धि को हम जितना एकाग्र करते हैं तो आत्मा के अंदर की जो खाद है वो निकलने लगती है, फिर वो हल्कापन महसूस होने लगता है। और ये बीज रूप अवस्था में अशरीरी अवस्था में ही संभव है, इसलिए लंबे समय तक हम अशरीरी अवस्था का अभ्यास करें। कोई भी जो इस संसारिक संबंधों से ऊपर उठने का एकमात्र जो उपाय भी यही है, अशरीरी अवस्था। और ये सहज ही है, इसको हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये हम सबकी बुद्धि में तो है ही है, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, वीके है नॉन वीके है, ब्राह्मण है गैर ब्राह्मण है, सबकी बुद्धि में शरीर तो सबको छोड़ना ही है। तो पहले से क्यों ना हम आत्मा का अभ्यास कर लें, ये हमारा मुख्य फाउंडेशन है। इसी से ही आत्मा तिंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। तो बाबा ने कहा एकाग्रता यह तीव्र पुरुषार्थ की सहज विधि जिसका संकल्प बोल और कर्म से भी संबंध है। तो संकल्पों में भी एकाग्रता, बोल में भी एकाग्रता, कर्मों में भी एकाग्रता। फिर बाबा ने कहा संकल्प में सिद्धि क्यों नहीं होती है, उसका कारण भी एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता की कमी से ही हलचल होती है, कोई भी विषय पर हम स्पष्टीकरण नहीं है तो हलचल होती है, एकाग्र नहीं है उसके ऊपर बुद्धि। बार बार हम अपने विषय को छोड़कर या अपने कार्य को छोड़कर इधर उधर अपने मन बुद्धि को भटकाते हैं तो हलचल में आ जाते हैं। तो संकल्प सिद्ध नहीं होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है और एकाग्रता की कमी से ही हलचल होती है। भगवान का जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्थिति भी स्वतः एक रस बन जाती है, क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठेगा। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्थिति भी एक रस बन जाएगी और संकल्प बोल कर्म तीनों में जो व्यर्थ आता है वो भी समाप्त हो जाएगा, अर्थात समर्थपन आ जाता है और समर्थपन होने के कारण ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सर्व सिद्धियां प्राप्त होती जाती, क्योंकि जब कोई भी शक्तिशाली है तो उसको एक अंदर में विश्वास है इस कार्य को हम कर सकते हैं, समर्थ अर्थात हर कार्य को करने की विधि उसको मालूम है कि इसको कैसे करना है, क्या क्यों का प्रश्न ही नहीं है। फिर एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, जिस बीज रूपी संकल्प में सारे वृक्ष का विस्तार समाया हुआ है, तो जो संकल्प है उसमें सारे वृक्ष है, उसमें अनेक संकल्प हैं, एक ही संकल्प के पीछे अनेक संकल्पों का विस्तार है। जैसे बाबा बीज रूप है लेकिन उसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, उसी तरह से जो भी हम कार्य करते हैं उस संकल्प से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें आती है तो उसके ऊपर हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि उस बीज रूपी संकल्प में वो वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ ऑलरेडी। इसलिए भगवान का एकाग्रता को बढ़ाओ तो हलचल स्वतः समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। फिर उस बाबा ने वहां एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई भी संसार में हलचल वाली चीज होती है तो दूसरों को भी हलचल मिल जाती है। लाइट का उदाहरण दिया, लाइट जाती है तो संकल्प चलता है सबका, ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, एकाग्र है तो नहीं संकल्प चलेगा। तो एकाग्रता सबको आकर्षित करती है। एकाग्र वस्तु है तो वो स्पष्ट देखने में आती है एकाग्रता के आधार पर ही। एकाग्र वस्तु है तो अगर हमारे में एकाग्रता है तो उस एकाग्रता के आधार पर ही एकाग्र हुई वस्तु भी स्पष्ट देखने में आएगी। अगर हलचल वाली है वो स्पष्ट देखने में नहीं आएगी। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, अगर ठीक रखी है तो पढ़ने में आ रही है, अगर हिला रहे हैं तो पढ़ने में नहीं आएगी। उसी तरह अगर हमारा मन बुद्धि एकाग्र है तो उसके आधार पर जो स्वयं का रूप है, जो है जैसा है, वो स्वयं स्पष्ट अनुभव होगा, उसमें प्रश्न नहीं उठेगा मेरा आत्मिक रूप में कैसे टिकूं, स्व का रूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है वैसा है, ये प्रश्न नहीं उठेगा, स्पष्ट है। और स्पष्ट है तो उसमें बाबा ने कहा कि जैसे स्व के रूप के ऊपर भी हम अपने को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं, ऐसे बाप के रूप को भी स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। जितनी स्पष्टता होगी उतनी भगवान का सर्वशक्तियों की सिद्धियां प्राप्त होती जाएंगी। सर्वशक्ति एकाग्रता ही से ही सर्वशक्तियों की सिद्धियां प्राप्त होगी और सिद्धियां प्राप्त होगी तो संकल्प जो है शक्तिशाली है तो फलदायक है। तो इस तरह से भगवान ने स्पष्टीकरण करने के लिए एग्जाम्पल दिए, बार बार वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया, लाइट का एग्जाम्पल दिया। फिर भगवान ने कहा अगर स्पष्ट है तो फिर संकल्प बोल और कर्म वो तीनों में आदि मध्य अंत तीनों काल ऐसे स्पष्ट होंगे जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ये क्या होने वाला है, वो भी एकाग्रता की कमाल। तो केवल एक एकाग्रता की शक्ति के पीछे कितनी सारी शक्तियां समाई हुई है, अर्थात सर्वशक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा जैसे आजकल की दुनिया में है हलचल से बहुत तंग आ गए हैं। उसमें बाबा ने पांच बातें बताई, वैसे तो एक तो राजनीति वाले हैं, चाहे राजनीति वाले हैं वो भी हलचल में हैं, चाहे वस्तुओं की हलचल है, महंगाई वगैरह है, फिर चाहे करेंसी की हलचल है, रुपया ऊपर नीचे होता रहता है, चाहे कर्म भोग की हलचल है, चाहे धर्म की हलचल है, क्योंकि अधिकतर क्या लगभग सब आत्माओं के धर्मों से भी ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। बाबा ने कहा अपना एक धर्म के ठेकेदारों से विश्वास उठ रहा है। तो सब प्रकार की हलचल से तंग आ गए हैं, राजनीति की हलचल, वस्तुओं की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, सब प्रकार की हलचल से तंग आ गए हैं। जैसे बाबा ने कहा उस वहां भी एग्जाम्पल, जैसे साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे लेकिन आज वही साधन हलचल में लाने वाले हैं। फिर इसके ऊपर बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई भी वस्तु स्पष्ट है तो क्वेश्चन नहीं उठता है, ये है स्पष्ट है तो उसको पता है ये चीज है, उसमें क्वेश्चन खत्म हो गया, माना हलचल समाप्त होगी, हलचल समाप्त होगी, एकाग्र होगी। तो आज के साधन जो है वो सभी हलचल में लाने वाले हैं, ये अनुभव करते हैं सभी। इसके लिए भावना एकाग्रता को बढ़ाओ, इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांतवासी बनने से एकाग्र सहज हो जाएंगे। फिर एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें जो ध्यान रखने की जरूरत है, अंतर्मुखी रहें, साइलेंस रहें, और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शरीर से डिटैच ड्रिल, जैसे उस दिन बताया ना, ये तीनों रूप आपके ही हैं, साकारी आकारी। जैसे साकारी रूप को अपने समझते, ऐसे आकारी और निराकारी रूप भी अपना है वो। तो बार बार हम साकारी आकारी निराकारी, साकारी आकारी निराकारी, इन तीनों अवस्थाओं से गुजर के जाएं तो हम अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और हमें अपनी एकाग्रता कहाँ कहाँ भंग होती है उसका भी चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों को सहज भाव से स्वीकार नहीं करते हैं, उनको स्वीकार करना मुश्किल होता है। दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए, लेकिन स्वयं के अंदर जो दोष है उनको देखने के लिए, जो नजदीक की नजर है उसको देखने के लिए बहुत अहंकार मुक्त होना पड़ेगा। हमारे अंदर अंदर क्या है, जैसे कल बताया ना, धमनियों में पवित्रता स्पंदित होनी चाहिए, बताया था कल। तो हमारे अंदर जो राग राग में वासनाएं जो दबी हुई है, वो भी हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे अंदर ये हैं। हमारी दृष्टि में क्या क्या है, अभी क्यों हमारी दृष्टि हलचल होती है, हमारा बोल एक्यूरेट क्यों नहीं निकलता है, दूसरे के दिल को दुखाने वाला क्यों निकलता है, हमारे संकल्प एकाग्र क्यों नहीं हो पाते हैं, स्वयं के ऊपर चिंतन करने का। हालांकि दूसरों की कमी कमजोरियां तो दिखाई देती हैं और दिखाई देंगी भी, लेकिन उनसे हम प्रभावित होने के बजाय उनके प्रति शुभ भावना कामना रखें। तो शुभ भावना कामना भी तभी रख सकते हैं जब पहले हमें स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना रखेंगे। स्वयं के प्रति रहम दिल नहीं है तो दूसरों के प्रति रहम जागृत कैसे होगा। इसलिए पहले स्वयं के ऊपर उपकार करना है, स्वयं के ऊपर रहम करना है, स्वयं की कमी कमजोरियों को स्वीकारना है कि ये हमारे में है। नहीं तो दिखाने के जाना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, यार वो वाली बात हो जाएगी। बाहर से तो देखने में हम बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जो एक आंतरिक दिल से पुरुषार्थ होना चाहिए, जो फिर पुरुषार्थ का परिणाम जो अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए, वो अनुभूति नहीं होती है। बाहर से हम अच्छा अच्छा लगेगा, दूसरों को सुना भी लेंगे, लेकिन स्वयं की कमी कमजोरियों को एक्सेप्ट करना, ये थोड़ा फिर भारी पड़ जाता है। अच्छा, ओह शांति।
ओम शांति। मुरली में एक शब्द आया है सिद्धि, सिद्धि स्वरूप बनने की विधि। सिद्धि अर्थात प्राप्ति, सफलता, पूर्णता और संसार में सिद्धि किसको कहा जाता है, ये तो बाबा कहते हैं या इस तरह से चमत्कार। सिद्धि अर्थात चमत्कार, सिद्धि अर्थात सुपर नेचुरल पावर्स। योग के मार्ग में कोई जाता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। आठ सिद्धियां बताइए, बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, ये इस प्रकार की बहुत सारी, जो चाहिए वो सामने आ जाना, और भी बहुत सारी सिद्धियां है, पानी के ऊपर चलना, आकाश गमन करना,
तो ये सब
आवाज सुनना, क्लायर वॉइस, क्लायर ऑडियंस, यहाँ बैठे हुए कहाँ और क्या आवाज चल रही है वो सुन लेना, यहाँ बैठे हुए कहाँ क्या चल रहा है वो देख लेना, ये सारी चीजें सिद्धियां होती है। तो बाबा कह रहे सिद्धि स्वरूप बनने की विधि क्या है, एकाग्रता। सिद्धि स्वरूप बनना अर्थात ही तीव्र पुरुषार्थ। सिद्धि स्वरूप बनना, सिद्धि किसमें, सिद्धि सिद्धि शब्द दो रीति से यूज किया गया है वहां पर। एक है सिद्धि स्वरूप बनना, अर्थात ये जो सारी सिद्धियां जिसे संसार सिद्धि कहता है उसके जैसे तुम स्वरूप बन रहे हो, दूसरों को सिद्धि प्रदान करने वाले हो, सिद्धि दाता। दूसरा है मन, मनसा वाचा कर्मना सिद्ध हो जाए, जैसे वाक सिद्धि होती है, कोई बोलता है जो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा, उसे कहा गया है वाक सिद्धि। संकल्प सिद्धि, जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएंगे। कर्म सिद्धि, जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता। तो एक सिद्धि अर्थात इस तरह की पावर्स या फिर प्राप्तियां या फिर चमत्कार, वो संसार की रीति से कहते हैं। बाबा यहाँ थोड़ा दूसरे रीति से कहते हैं, और दूसरा यहाँ पर है कि मनसा वाचा कर्मना, ये सब सिद्ध हो जाएंगे, मतलब सत्य हो जाएंगे जो भी कहोगे। इसमें सबसे पहले तो बाबा ने परिभाषा बताई है, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाना, सबसे पहले तो परिभाषा बताइए। दूसरा बताया इसकी विधि क्या है, विधि बस एक ही वाक्य में बता दिए, एकांतवासी बनो। पर ये बाबा का एकांतवासी बनो इतना सादा नहीं है कि चुपचाप एक अकेले हो जाओ, ये एकांतवासी नहीं है। एक की याद में, एक के अंत में, एक के स्मरण में, स्मृति में खो जाना, समा जाना, मगन हो जाना, ये एकांत है। इसमें आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, वो भीड़ में एकांत का अनुभव है। एकांत एकाग्रता से क्या क्या होता है उसकी कितनी लंबी लिस्ट गिनाई है बाबा ने। सबसे पहला तो एकाग्रता से हलचल समाप्त, एकाग्रता से व्यर्थ समाप्त, एकाग्रता से एकर स्थिति, एकाग्रता से बहुत सारी बातें स्पष्ट दिखेगी। कौन कौन सी बातें? सबसे पहला तो अपना और बाप का स्वरूप, ये स्पष्ट हो जाएगा। कितनी अच्छी बात कही है, हमारा जो आत्मिक स्वरूप है वो स्पष्ट दिखाई तभी देखा देगा जब हम एकाग्र है। जैसे कोई झील है ना, निस्तरंग झील, कोई तरंगे नहीं है उसमें, तभी हम थोड़ा अंदर का देख सकते हैं, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जो झील है जिसमें निरंतर लहरें आ रही है बहुत सारी, उसमें आकाश प्रतिबिंबित नहीं होता है। जब वो शांत हो जाती है और निस्तरंग हो जाती है तभी उसमें वो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो स्वयं का स्वरूप और बाप का स्वरूप एक। दूसरा, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा, हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है बाबा ने कहा, हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगर एकाग्रता आ जाए हर वस्तु वैसे ही दिखाई देती है जैसे वो है, सीइंग थिंग्स एज दे आर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हर वस्तु जैसी है वैसी ही दिखाई देना, हर परिस्थिति जैसी है वैसी ही दिखाई देना, हर आत्मा जैसी है वैसी दिखाई देना, ये एकाग्रता से हो जाएगा। एकाग्रता से और क्या हो जाएगा? आकर्षण, जैसे दूसरे हमसे आकर्षित हो जाएंगे, हम दूसरों को आकर्षित करने के लिए हमारी उतनी एकाग्रता चाहिए। जैसे संडे की मुरली जो थी लास्ट, टीचर से मुलाकात, उसमें बाबा ने कहा था ना, जितने आप एकाग्र होंगे और हलचल मुक्त होंगे उतने ही दूसरों को एकाग्र कर सकेंगे। स्वयं ही अगर हलचल में है तो दूसरे एकाग्र नहीं हो सकते। तो ये भी एक है। दूसरा, हम यदि एकाग्र है, उसने ये भी कहा बाबा ने, दूसरों को एकाग्र कर सकते, एक तो आकर्षित भी कर सकते और दूसरा एकाग्र भी कर सकते उनको। तो इतनी सारी बातें सुनाई बाबा ने। और संकल्प है वो भी स्पष्ट हो जाएंगे, संकल्प भी स्पष्ट, बीज कहा है संकल्पों को बाबा ने। तो एकाग्रता से हलचल समाप्त हो जाएगी। हलचल भी कौन कौन सी हलचल, कितनी हलचल गिनाई? पांच या छह? छह। धर्म, विज्ञान और राजसत्ता की हलचल, ये तीन हलचल तो है ही है। विज्ञान को लास्ट में सुना दिया, पर वो है विज्ञान। तो सबसे पहले विज्ञान के साधनों की, विज्ञान की हलचल, धर्म की हलचल और तीसरी राजनीति की हलचल। उसके बाद में महंगाई, ये भी एक हलचल, महंगाई दूसरा, करेंसी दूसरा, करेंसी अर्थात करेंसी की हलचल अर्थात ये जो शेयर मार्केट भी कहो उसको, या फिर यहाँ का रुपया और उधर का डॉलर, वो हलचल हो रही है ना, उसमें काफी हलचल है, पहले क्या था अब क्या है, तो ये भी एक करेंसी की हलचल है। तो करेंसी की हलचल, ये महंगाई, ये भी एक हलचल है, कर्म भोग की हलचल, ये तीन मुख्य हलचल बताई यहाँ पर। कर्म भोग की भी हलचल, कर्म भोग सारा निकलेगा बाहर, जो अब तक हिसाब किताब नहीं था वो सारा बाहर आएगा, जो हमने सोचा नहीं था कि ये भी होगा। तो ये सारी हलचल है, इन सारी हलचल से मुक्त होने की विधि भी एकाग्रता है। तो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है एकाग्र होने की। योग अर्थात केवल एकाग्रता भी नहीं है, परंतु योग बहुत बड़ी चीज है। एकाग्रता अर्थात फोकस, एक टॉर्च है जो एक तरफ फोकस कर दिया, योग अर्थात पूरा कमरा ही प्रकाशमान हो जाए। एकाग्रता उसमें से एक छोटी सी बात है, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे कहा ना कागज, ये जो है विकर्म जो विनाश होंगे वो एकाग्रता के सिवा नहीं हो सकते, जो भी अनुभव होने वाले हाँ एकाग्रता के बिना योग भी नहीं है, परंतु एकाग्रता ही योग नहीं है। योग का अभिन्न अंग भले है वो, परंतु वो केवल एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता तो संसार में बहुत लोग करते हैं। स्टूडेंट एकाग्र होता है, वैज्ञानिक एकाग्र होता है, जो संसार की सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले वो भी एकाग्र होते हैं। संसार में एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन, परंतु वो भी एकाग्र होते हैं। एकाग्र होने वाले संसार में कमी नहीं है लोग। हाँ, जितना सफलता मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर बिना एकाग्रता के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे विवेकानंद ने कहा एक जगह, बहुत सुंदर वाक्य है, उसने कहा कि अगर मुझे अवसर मिल जाए अपनी सारी शिक्षा बचपन से लेकर अब तक पुनः स्टार्ट करने का, तो मैं सबसे पहले एकाग्रता को सीखूंगा, उसके बाद में जो करना है वो करूंगा। अभी इस जीवन में गलती कर दी, बस पढ़ते आ रहे और अभी पता चला कि एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे अवसर दिया जाए तो सबसे पहले एकाग्रता कैसे हासिल की जाए वो मैं सीखूंगा, और उसके बाद में ये सारा जो ज्ञान है जो बचपन में स्कूलों में या धर्म का ज्ञान या अध्यात्म का ज्ञान वो तुरंत प्राप्त कर लूंगा अगर एकाग्र बुद्धि है तो। वैसे एक जगह अब्राहम लिंकन ने कहा है कि अगर मुझे एक झाड़ दिया जाए और कहा जाए कि इस झाड़ को तुमको 6 घंटे में इस कुल्हाड़ी से काटना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 घंटे उसकी धार ही तेज करूंगा बस। इफ आई एम गिवन अ ट्री टू कट इन 6 आवर्स, आई विल स्पेंड फर्स्ट 4 आवर्स इन शार्पनिंग द एक्स। वो जो कुल्हाड़ी है उसको तेज करने में पहले 4 घंटा मैं वही करूंगा। ऐसे नहीं कि बस लगे दिए और लगे, तो 6 घंटे के 10 घंटे भी लग सकते हैं, पर पहले 4 घंटे केवल उसको शार्प करूंगा बस, ताकि फिर एक ही बार से दो, एक या दो या तीन बार से कट जाए। तो योग के लिए भी एकाग्रता वैसी महत्वपूर्ण है, बार बार चित्त को एकाग्र करना। एकाग्रता अर्थात कॉन्सेंट्रेशन। पर योग जो शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है, वो बहुत बड़ा है। योग अर्थात अवेयरनेस, योग अर्थात बोध, योग अर्थात साक्षी भाव, योग अर्थात दृष्टा भाव। योग बहुत ही व्यापक शब्द है, ऊंचा है। उसमें का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि एकाग्रता है। तो योग में बाबा ने एकाग्रता की जो परिभाषा दी है, एक शक्तिशाली संकल्प में टिक जाना। आपने अगर देखा होगा जब हम अमृत वेले उठते हैं, अगर एक संकल्प में हमारा मन टिक जाता है तो उस दिन योग बहुत शक्तिशाली होता है। पर उठते ही अगर बहुत सारे संकल्प आ गए तो फिर वो एकाग्र नहीं हो पाता है। संकल्प स्थिर हो जाए, और उसमें भी अनेक संकल्प नहीं, कम से कम, एक्चुअली शास्त्रों में तो यही कहा हुआ है, निर्विचार स्थिति, अनावश्यक जो विचार है उससे मुक्ति एक, अनावश्यक जो भावना है उससे मुक्ति दो, अनावश्यक जो कल्पना है उससे मुक्ति, अनावश्यक ये जो भी अनावश्यक है जिसको हम व्यर्थ कहते हैं, उससे विचार भावनाएं और कल्पना, इमेजिनेशन थॉट और इमोशंस जो कि अननेसेसरी है, जो जरूरत नहीं है जीवन में, उससे हम जैसे अलग होते हैं तो चित्त एकाग्र होता है। जितने संकल्प कम उतने हम शक्तिशाली, जितने संकल्प ज्यादा उतने हम कम शक्तिशाली। तो ये हम जा रहे हैं निर्विचार की अवस्था की ओर, पर वो निर्विचार भी मतलब जबरदस्ती नहीं, वो स्वतः हो रहा है, क्योंकि जितने श्रेष्ठ संकल्प है वो कम ही होते हैं, श्रेष्ठ संकल्प बहुत ज्यादा नहीं होते। गीता में लिखा हुआ है ना, जिस योगी के मन में संकल्पों का अभाव है वो क्या, संसार की सबसे अधिक सेवा वही कर सकता है। जिस योगी, वह योगी जिसमें संकल्पों का अभाव है वो विश्व की सबसे अधिक सेवा करता है, क्योंकि उसके द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाइब्रेशंस विश्व में स्पंदित होते हैं सब जगह। तो योग में एकाग्रता की पहले तो बाबा ने परिभाषा बताई कि एक संकल्प में स्थित हो जाओ, विधि बताई एकांतवासी बन जाओ, क्या क्या होता है ये सारी चीजें होती है, स्पष्टता आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी ऑफ विजन, जैसा है वस्तु वैसे ही देखेंगे, चाहे वो हम है या दूसरे है या परिस्थिति है, बाप या बाप है, जैसा वो है उसको वैसा ही देखना, जानना, समझना, मानना, ज्ञान जैसा है वैसा ही, ऐसा नहीं कि हम अपने रीति से उसको मॉडिफाई करते हैं ना, सुविधाजनक श्रीमत, फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस, अपनी रीति से उसको मॉडिफाई कर लेना, बाबा कह कुछ रहा है पर हम अपने रीति से उसको ढाल लेते, वो नहीं। तो ये स्पष्टता भी हमको तभी आएगी जब मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ एकाग्र हो। एकाग्रता कैसे बढ़ी, सुशील भाई ने बताया दो तीन बातें, उसमें महत्वपूर्ण और एक चीज है कि जितनी इच्छाएं कम है हमारी, हाँ पवित्रता तो है, एक और एक बात बताऊं, इच्छाएं जितनी कम है उतना हम एकाग्र है, और कल जो हमने पढ़ा उसमें था ना, जितना लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट है उतने ही सारे लक्षण आएंगे, अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं तो लक्षण नहीं आएंगे। तो एकाग्रता के लिए पहले तो इच्छाओं को थोड़ा कम करना पड़ेगा, जिसकी बहुत सारी इच्छा है वो एकाग्र कैसे हो सकता है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य बहुत फोकस्ड हो, बहुत फोकस्ड कि बस ये यही है मेरा लक्ष्य, अगर ये लक्ष्य है तो ये सारी जो चीजें है ये डिस्ट्रैक्शन है, ये भटकाने वाली चीजें है, अगर ये लक्ष्य रखा है तो। अगर योगी बनने का लक्ष्य रखा है तो भोगी बनने वाली जो जो चीजें है वो मार्ग में बाधा है, फिर तो उसको हटाना ही पड़ेगा, उसके साथ और इसके साथ हम चल नहीं सकते। तो ये स्पष्टता, तो लक्ष्य की स्पष्टता, तो लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छाएं कम हो, फिर जैसे कहा पवित्रता, वो तो हर चीज का आधार वही है, फाउंडेशन, संपूर्ण फाउंडेशन जो है वो तो संपूर्ण पवित्रता ही है। जितनी हमारे मन में पवित्रता है उतना ही मन स्वच्छ है, पवित्र है। एंड द क्लियरर द माइंड, द प्योरर द माइंड, द इजियर इट इज टू कंट्रोल। मन तभी वश में आता है जितना वो पवित्र होगा, उतना ही उसको वश में किया जा सकता है। अगर वो पवित्र नहीं है, क्योंकि विकार के जो संकल्प है वो बहुत वेग होता है उनमें, वो एकाग्र नहीं रख सकते किसी को भी, इधर उधर भागते हैं, उधर उधर बेचैनी लाते हैं मन में, एक बेकरारी कि व्यक्ति चित्त शांत नहीं हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता है, विकार के संकल्प, वैसे ही निगेटिव संकल्प, वैसे ही व्यर्थ संकल्प, साधारणता भी बाबा ने उसको भी अपवित्रता कहा हुआ है। तो पवित्रता, ध्येय की स्पष्टता, इच्छाओं की कमी, ये सब हमें एकाग्र बनाएगी। और जैसे बताया रूहानी ड्रिल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब तो आ गया बाकी जो कहा, परंतु एकाग्रता को कैसे बढ़ाए उसका अभ्यास सुबह से चालू करना है। सुबह का उठते ही सबसे पहला संकल्प, ऐसा नहीं कि उठते ही बहुत सारा जो हमको आज कार्य करना है, किसी व्यक्ति से मिलना है, पहला उसकी याद, आज उसको मिलना है, हो गया, वो पहला संकल्प किया तो योग गया, वही सोचेंगे उसको कैसे मिले, क्या करे, और ये इधर उधर की सारी भटकाने, सेवा के संकल्प वो है महत्वपूर्ण, पर यहाँ पर हमको सीधा उठते ही जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, आत्मिक स्वरूप के संकल्प, आत्मा के जगत के संकल्प, एक है देह का जगत, एक है आत्मा का जगत, हमें शरीर के जगत में उपलब्धियां है, शरीर के जगत में भोग है, वासनाएं है, ये सारी चीजें वहां आ जाती है, पर आत्मा का जगत जो है वो दूसरा है, हमें आत्मा के जगत में स्थित हो जाना है। सुबह उठते ही मैं कौन, सुबह उठते ही किसने जगाया, सुबह उठते ही बाबा ने कहा ना जाकर उठकर सीधा बाप के पास बैठ जाओ, अभी एक दो मुरली में था ना संडे में, उठते ही उछल कूद जाओ बाबा के पास चले जाओ। तो वो सारे संकल्प हमारे पहले संकल्प हो, वहां से हमारी एकाग्रता शुरुआत होती है। उसके बाद ये तो हो गया योग की सारी, उसमें फिर रूहानी ड्रिल, अशरीरी होना बीच बीच में, ये भी उसमें भी एकाग्रता चाहिए, जितनी ज्यादा एकाग्रता उतना हम देह से अलग हो सकते। अगर मन हलचल में है तो एकाग्र नहीं हो सकते, अशरीरीपन का कोई अनुभव नहीं। एक ही संकल्प में लंबा समय टिकने का अभ्यास, किसी भी एक सामान ले लिया उस पर थोड़ा रुकना है, बस ऐसा नहीं कि बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ वो पूरा हुआ, अभी मैं त्रिकालदर्शी हूँ वो पूरा हुआ, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, उसमें एकाग्रता नहीं आएगी, ना ही योग में अनुभव होगा। योग में अनुभव उसी दिन उसी समय होता है जब हम संपूर्ण एकाग्र है। सर्व संबंधों का अनुभव भी तभी होता है जब हम एकाग्र है। सर बिना चिंतन, इसके लिए वो चिंतन उस समय नहीं, दिन भर भी या योग के समय नहीं। योग के समय तो उसका सब वो प्रैक्टिकल में आएगा। हाँ, केवल एक इसके लिए कहा हूं ना, चिंतन बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शब्द भी अलग अलग चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, आगे बस हो गया नेक्स्ट, कि उसको ही रिपीट करते रहना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, वो बोर हो जाता है। नहीं, अगर मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो थोड़ा विस्तार करो उसका। शिव में जो शक्ति है वो मुझ में है, मैं शिव शक्ति हूं। जो उसकी शक्ति है उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी है। अब मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, अब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, अब मैं बलशाली आत्मा हूं, अब मैं सामर्थ्यशाली आत्मा हूं, अब मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। हमेशा वो ही बोलना है, जरूरी नहीं है कि मैं मास्टर सर्व, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं ताकतवर हूं, बलशाली हूं, अतुलित बलधामा, जो महावीर हनुमान के लिए कहते हैं ना, अतुलित बलधामा, वैसी मैं आत्मा हूं। शब्द भी बदल दिए हमने। अभी नए शब्द जब आते हैं तो बुद्धि उसमें थोड़ा उसको स्थिर होती है, नहीं तो वही 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 शब्द एकाग्र नहीं होती है उसमें बुद्धि। हाँ, वो रात की स्थिति भी आधार है उसके ऊपर। हाँ, किस स्थिति से सो रहे हैं? चिंताओं में सो रहे, टीवी देखते सो रहे, नॉवेल पढ़ते सो रहे, कोई दूसरी किताब पढ़ते सो रहे, वो सब करते हुए सो रहे जो ज्ञान और योग नहीं है, तो हलचल होगा। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो ड्रिल के बारे में हम कह रहे थे कि, और एकाग्रता, तो एक संकल्प लिया, एक सोमान लिया और उसका विस्तार किया, थोड़ा उसका विस्तार करना है। इसकी अभ्यास, इसका अभ्यास दिन भर में ही चाहिए, केवल योग के समय नहीं होगा, डायरेक्ट हो। शायद हमारे पास ऐसा भी हो सके कि कमेंट्री लिखी हुई हो, वहां जाके ये लगा के कमेंट्री और गीत लगा के योग नहीं होता है, कान में डाल के गीत सुन रहे, वो योग थोड़ी है, भक्ति है वो। अच्छा है, चलो, वो हम बात कर रहे हैं तीव्र पुरुषार्थियों के लिए, तो वो पॉइंट पहले ही तुमको पता चलना चाहिए। हम बात कर रहे हैं जो नए नए आए, उनकी बात चालू ही नहीं है यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं एकदम जो सबसे अधिक तीव्र पुरुषार्थ है, वो कि जिनको तीव्र पुरुषार्थ करना है, बस ये जो बातें चल रही है उन्हीं के लिए है। बाकी जिनको कुछ करना नहीं उनके लिए बातें है ही नहीं, उनके लिए सेवाएं है, वो कर रहे हैं सेवाएं। वो खाली सेवाओं की बातें नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी स्थिति को हमको ऊपर लेके जाना है। वही स्थिति नहीं रहनी चाहिए जो 5 साल पहले थी, जो 2 साल पहले थी, जो 1 साल पहले थी। हर दिन हर समय हमारी स्थिति ऊपर ही ऊपर होती जाए, उसके लिए हमारी एकाग्रता बढ़ती जाए, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा चिंतन मनन और ज्यादा से ज्यादा वो योग में प्रयोग। उसका लक्ष्य है योगी बनने का। तो ये सारा चिंतन भी योगी बनने के लिए ही है। ये कोई ये साध्य नहीं है, ये साधन है। साध्य कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, ये सब उसके आधार है, साधना के आधार है ये। साध्य तो कुछ और है। तो रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है बीच बीच में, सारे दिन भर में, चाहे वो छोटा छोटा हो। मैं कोई भी एक सोमान ले लिया, बीच बीच में उसमें थोड़ी देर स्थित हो जाना, बुद्धि को एकाग्र करना, संकल्पों को एकाग्र करना, संकल्प को एकत्र कर देना, जो बिखरे हुए हैं उनको एकत्र करना कि मैं ये हूं, क्योंकि भूल जाता है बार बार। तो बार बार एकाग्रता, बार बार कॉन्सेंट्रेट करना है माइंड को, तो एक रूहानी ड्रिल भी है। और भी कुछ हो सकता है एकाग्रता के लिए? देवेंद्र भाई क्या करें एकाग्रता के लिए? और ये तो है ही, और भी कुछ? हाँ, वो लिस्ट निकालना, बार बार लिखना, जैसे समान क्या क्या है लिखना, प्राप्तियां क्या क्या है लिखना, अधिकार क्या क्या है लिखना, अच्छा मधुबन का क्या महत्व है लिखना। जब लिखोगे तो एकाग्र होगी, मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, क्या करने आया हूँ, अपने मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, और क्या कहा, किसी भी टॉपिक पर लिखना।
हाँ, प्रोग्राम्स किए थे 3-4 घंटा आपको ऑब्जेक्ट में रहना है, एक कमरे में बाबा प्रोग्राम्स हम अपने को
रोज ही, यहाँ हम जो पढ़ते हैं ना, वो केवल सुनना नहीं है, वो हम केवल आके सुनेंगे ना तो केवल उसमें 5 से 10% फायदा है बस। वो पहले ही पढ़ के आए पहले तो एक बात, तो ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट हम ग्राफ कर सकेंगे। हाँ तो वो हाँ नहीं अभी देखो इनको तो वो पर क्या बाकी सबने पढ़ा है क्या एकाग्रता से? हाँ नहीं पर ये हमारा तो है नहीं, हम सुरक्षित है हमारे ऊपर। ये माइक जब हाथ में आता है ना तब थोड़ा सा जागृत अवस्था होती है। हाँ वो इंटरेस्ट डेवलप करना है ना उसमें, कि हर दिन अपने आप को कुछ देना है। अभी दूसरी और एक चीज एकाग्रता के लिए, जो रोज की मुरली है साकार मुरली, वो उसमें से हमें कुछ तो महत्वपूर्ण पॉइंट निकालने हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट्स निकालने हैं उसमें से, और उसके बारे में हम थोड़ा और जाने और बाबा क्या कह रहे हैं। जैसे कल की मुरली में हमने बहुत अच्छा चिंतन किया था इस नर्क की खूबसूरती और स्वर्ग की खूबसूरती, तो नर्क की खूबसूरती में कितने पॉइंट निकले, 10-12 पॉइंट्स निकले, क्या क्या होता है उसमें, यहाँ की खूबसूरती क्या है और उधर की खूबसूरती क्या है। कल की मुरली में था ना ये पॉइंट, अभी खाली आया और छोड़ दिया ये शक्ति नहीं बनेगा, हमें उसको निकालना पड़ेगा वहां से वो क्या है। हाँ वो तो है। हाँ एक तो खुद भी करो, एक पहले खुद भी करके आओ, और पर जब संगठन में आओ तो आप सोचो कि मैंने देखो इतना चिंतन किया, अभी इससे ज्यादा शायद कोई होगा, पर आप देखोगे कि कोई एक नई पॉइंट बता दी जो हमारे हमने कभी सोची ही नहीं थी। हमारे क्लास में एक भाई आते हैं जिनको तो पढ़ना भी नहीं आता है ना लिखना आता है, खाली सुनते हैं बस, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते। तो एक बार हमने एक अच्छा टॉपिक सबको दिया था चिंतन के लिए, सब ने चिंतन करके आए, सब ने बताए अपनी अपनी पॉइंट्स। तो हमने बोला भाई आपको पता है, बोलो चेतू भाई कुछ पॉइंट, तो ऐसी पॉइंट सुना दी कि जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अभी ना उसको अंगूठा छाप ना पढ़ने आता है ना लिखने आता है, वो उसको वो जो भी पॉइंट सुनता है दूसरों को पूछ पूछ के सुनता है, मतलब क्लास में आने से पहले कि कोई पॉइंट्स बता दो, क्योंकि उसको पढ़ना तो आता नहीं है, कहाँ से पढ़े। मुरली एक बार थोड़ी आधी सुनता है, वो भी ड्यूटी रहती है तो चला जाता है, तो दूसरों को पूछता है भाई ये पॉइंट आज की मुरली के एक पॉइंट बता दो, किसी को सिस्टर को पूछता है, स्टाफ को पूछता है, पेशेंट को जाके पूछता है, और फिर आता है बड़ी मुश्किल से एक पॉइंट धारण करके याद रख के। परंतु मैंने देखा कि उसके पास भी वो पॉइंट थी कि जो किसी ने नहीं सुनाई, जो कि बड़े बड़े महारथी चिंतन करने वाले सो कॉल्ड तथा कथित हाँ, पर जो भी है मतलब उसके पास थी ना, मतलब हमारा चिंतन हरेक के जीवन का अनुभव दूसरा है, हरेक के विचार दूसरे हैं, संकल्प दूसरे हैं, भावनाएं और अनुभव भी हो सकता है। हमने एक पॉइंट सुन ली, पर हो सकता है कि इस पॉइंट का मेरे जीवन में आज तक कोई उपयोग ही नहीं था, मैंने इसके बारे में कभी सोचा, कहीं खाली पढ़ लिया। अभी वो जो व्यक्ति है उसके जीवन में हुई है वो बात, तो वो जीवन के अनुभव के आधार से बता रहा है, तो उसमें पावर है थोड़ी। तो ये इस तरह से चिंतन करना, पॉइंट्स निकालना, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है उससे, बिल्कुल विदाउट एनी एफर्ट्स वैसे ही हम एकाग्र हो जाते हैं। फिर हमको यहाँ अभी जब कोई टॉपिक दिया जाता है तब हमारे मन में कोई हलचल नहीं, ये मुरली में जितनी बातें कही ना वो सारी आ गई, डायरेक्ट आ जाती है। कोई हलचल थी नहीं थी, क्योंकि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको सुनाना था। एक स्थिति एकरस स्वतः हो गई थी, स्पष्टता स्वतः आ गई थी, जो वो खाली शब्द नहीं रहे बाबा के, उसके साथ फिर हम किसी और मुरली को लिंक करना, ये और एक चीज करनी है, एसोसिएशन। एसोसिएशन कैसा, ये आज की मुरली उसका कल के मुरली से क्या संबंध है, ये आज की मुरली उसकी उस मुरली से क्या संबंध है, ये आज की मुरली उसका साकार का अव्यक्त के साथ क्या संबंध है, इस मुरली का इस संदेश के क्या साथ क्या संबंध, इस तरह से इधर से उधर जोड़ते रहना, उसको एसोसिएशन करना, तो और ज्यादा स्मृति शक्तिशाली होती है। इधर से उधर जोड़ना, उधर से इधर जोड़ना। कल मैं एक जगह साकार मुरली का एक वाक्य पढ़ रहा था, इतना अच्छा लगा मुझे, बाबा ने जिसमें एक साकार मुरली में कहा, अरे तुमको परमात्मा सुनाते हैं तो आंख मूंद कर मानना चाहिए, चाहे फायदा हो या नुकसान। ऐसा एक जगह बाबा ने साकार में कहा है, भगवान परमात्मा सुनाते हैं तो आंखें मूंद कर मान लेना चाहिए, चाहे फायदा हो या नुकसान, वो पूछो ही नहीं। कल की मुरली में भी एक कितना अच्छा वाक्य था, मेरी खातिर फॉर माय से एक बार आया था, मेरी खातिर पवित्र बनो। फायदा होता नुकसान होता वो पूछो ही मत, अब बस मेरी खातिर। जैसे कोई कहता है ना खाना खा रहा है कोई, एक रोटी और खा लो, अरे नहीं पेट भर गया, मेरी खातिर बस। वो पेट भरा या नहीं भरा वो छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ ना बस मेरी खातिर खा लो। वैसे बाबा तुमको फायदा हो नुकसान हो अब सब बातें एक तरफ रख दो, फॉर माय सेक मैं कह रहा हूँ इसके लिए पवित्र बनो। हाँ वही तो इस तरह से हमको हर दिन दिन प्रतिदिन हमारी एकाग्रता, योग में भी ज्ञान में भी, और एकाग्रता नहीं है तो धारणाएं भी कैसी होगी, हम बुद्धि फोकस ही नहीं होगी हमारी जब तक जिसको पता ही नहीं कि अमृत वेला का महत्व क्या है। केवल अमृत वेला उठ लिया उठ गए कर लिया वो नहीं है, शक्तिशाली अनुभव वो हो रहा है क्या, वो एक दिन भी नहीं हर दिन, उसमें एकाग्रता चाहिए। और सेवाओं में तो बिना एकाग्रता के सेवा कैसे सफल हो सकती है, जितनी सेवा है सब में एकाग्रता चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए तो ही सफल हो सकते हैं। अच्छा कल किसका है, अरविंद भाई दिल्ली ग्रुप, मैंने लेस्टर ग्रुप का भी दिया था वो तो आया नहीं है, लेस्टर चला गया है। चलो दिल्ली तो तीन पर उसके साथ, और फिर लेस्टर ग्रुप का कमलेश भाई, लेस्टर ग्रुप छोटा सा है, ठीक है, ओम शांति।